नमस्कार। आज के मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैं अर्चना सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे मित्रगण मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं, वे असल में ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां पर दूसरे लोग उनका मार्गदर्शन लेते हैं। वे अपने अपने विभागों में अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारीगण हमारे साथ आज आए हैं, लेकिन अपने अधिकारों का उपयोग करते समय, अपने अधिकारों को जताते समय भी इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर ऐसा समझते हैं कि हम जो छोटे पदों पर काम करते हैं उन्हें ही दिक्कतें होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनकी क्या समस्याएं हैं, इन्हें कौन सी उलझनों से गुजरना पड़ता है, आज हम ये जानेंगे। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ है बेहद अनुभवी शख्सियत पुष्पा रानी दीदी जी। दीदी जी नमस्कार। जैसा कि मैं बताती रही हूं, दीदी जी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विदर्भ क्षेत्र की सब जोन संचालिका है। दीदी जी, शुरू करें आज के सवालों का सिलसिला। पहला सवाल पूछना चाहते हैं नरेंद्र वाघमारे जी।
हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनसे जब मैं किसी काम के बारे में पूछता हूं तो पहले तो टाल मटोल वाली बात होती है। जब थोड़ा सा अधिक प्रेशराइज उनसे बात करें तो थोड़ा 5-10% तक वो काम कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान वो ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिसके कारण हम आधिकारिक रूप में कार्य करते हुए हमें बड़ी परेशानी होती है। उनकी उलझनों से उनको, उन्होंने जो सवाल किए उनको सलाह देना हम लोगों को बड़ी तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं, लेकिन अनुभव मेरा ऐसा है कि उनकी थिंकिंग जो होती है वो निगेटिव होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें मार्गदर्शन देंगी।
विचार और व्यवहार, इसमें अगर हम परिवर्तन लाते हैं तो काफी हद तक ये समस्या हल हो सकती है। आज तक हमने ये अनुभव किया कि जब हम अपने अधिकार को क्रोध के रूप में या डांट के रूप में हमने उपयोग किया तब वो कार्य हुआ, परंतु अगर हम एक दूसरी रीति से भी अगर हम विचार करें तो जब कोई भी व्यक्ति जो हमारे अंडर है काम करते हैं, जब उनके अंदर कुछ कार्य के प्रति लगन होगी, उस कार्य को जब अगर वो अपना समझेंगे तो काफी हद तक कठिनाई कम हो सकती है। जो काम 4 घंटे में होता था वो 1 घंटे में करने लगे, क्योंकि उनके स्टाफ में कार्य के प्रति लगन पैदा हुई। उसके लिए उन्होंने ये चेंजेस अपने आप में की कि हम उनको अपना एक राइट हैंड समझे, साथी समझे, क्योंकि प्रेशर से कभी काम नहीं होता है। हम अपने अनुभव में अगर हमारे से कोई प्रेशर से कराए कि हम करने के लिए तैयार होंगे, कहेंगे मैं किसी के दबाव में रहने वाला नहीं हूं, प्यार से काम कराए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो आज से आप एक प्यार का शस्त्र यूज करके देखिए, उनको अपना ही एक, जैसे भी शरीर का अंग हमारे भिन्न भिन्न है, उनको अपना समझिए, पर होते तो हमारे ही हैं। तो जो एक स्नेह आपके व्यवहार में बदलेगा, प्यार आपके व्यवहार में आएगा, फिर उनको अगर आप 2 बात प्यार से कहेंगे तो अनुभव ये कहता है वो अवश्य उस कार्य के प्रति स्नेह लगन वो उनके मन में क्रिएट जरूर होगी।
देखते हैं अगला सवाल क्या है जिसे पूछना चाहते हैं शिव कुमार श्रीवास जी।
पारिवारिक संबंधों में मधुरता कैसे लाए?
मधुर संबंध होना बहुत जरूरी है, पर वो मधुरता कब खत्म होती है? जब हम 1-2 को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, विचार से विचार मिलाने का प्रयास नहीं करते हैं। मन में यह भावना रहती है मैं घर का बड़ा हूं, जो मैं कहूं वो सबने मानना चाहिए। परिवार के अन्य सदस्य भी उसी प्रकार से सोचते कि हमारा भी कुछ अधिकार है, हमारा भी अपना विचार है, हमारी सुनी क्यों नहीं जाती। तो अगर हम आपस में बैठ करके एक दो के विचारों को समझें, एक दो की दिक्कतों को समझें, तो हम प्यार से उसको निपटा सकते हैं। और ये बात हमेशा के लिए होनी चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर, कहां अगर हमें अपनी इच्छाओं का भी त्याग करना पड़े, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े, तो भी हम करने में पीछे ना हटें। जिसके अंदर आप देखें कि ये परिवार में हमारे मधुर संबंध बन सकते हैं, वो कार्य करो। जहां देखो इसका ये कार्य करने से या ये बात कहने से थोड़ा भी तनाव आ सकता है, तो आज का थोड़ा तनाव कल का वो बढ़ता हुआ रूप लेके विकराल रूप ले लेता है। तो जब मनोगत को जानते जाएंगे तो वहां विचारों में भिन्नता क्यों आएगी, वहां तनाव क्यों आएगा, मतभेद क्यों पैदा होगा। तो गोया एक दो के दिलों को समीप करिए। जहां दिलों की समीपता है वहां हमारे परिवार में कटुता आ नहीं सकती है।
शिवाज जी, दीदी जी ने ये कहा कि परिवार में सिर्फ अधिकारों का उपयोग ना करें, बल्कि उसको थोड़ा प्रेम दे, थोड़ा समय दे, अपने आप मधुरता आ जाएगी। अगला सवाल पूछना चाहते हैं दुष्यंत कुमार जी।
दीदी, छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आता है और उसकी वजह से मन बहुत अशांत रहता है और दो दिन तक ऐसा मन में उथल पुथल चलती रहती है, ऐसा क्यों होता है?
क्रोध वास्तव में एक हमारे अपने मन की कमजोरी है। देखा जाता है कई बार घटनाएं वही होती हैं, एक व्यक्ति बहुत सहज रीति से अवॉइड कर देता है, कोई बात, धीरज रखो, शांति रखो, ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति होता है, नहीं ऐसा क्यों हुआ, तो ये अपने अंदर के एक सहनशीलता की कमी, सामना करने की शक्ति की कमी, हमारी अपनी ही कमी है। और ये भी हम जानते हैं अगर शांत रहें उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। इसके लिए कई बार हम अपनी गलती को भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि हम जोश में आ जाते हैं। कहा भी जाता है आण मंजी झगड़ा टूटा, आप कोई भी बात में सॉरी कह दो, बात खत्म हो जाएगी। बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी एक परिवार के सदस्य हैं, समाज के हम एक इकाई हैं, हर एक को समान जीने का, अपनी बुद्धि का उपयोग करने का समान अधिकार भी है। हमको क्रोध कब आता है, जब दूसरा हमारे मन के मुताबिक काम नहीं करता है। तो इसलिए अपने स्वधर्म में एक स्थित तो है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने स्वधर्म में स्थित रहो तो ये बाहर का संस्कार, पुराना संस्कार है, उसके ऊपर भी जीत पाएंगे।
क्रोध एक ज्वाला है जो न सिर्फ सामने वाले को तकलीफ देती है बल्कि कहीं न कहीं हमारा अपना भी नुकसान करवाती है। इसीलिए जहां तक हो सके इस पे जिस भी युक्ति से काबू कर सके करना बहुत जरूरी है। देखते हैं अगला सवाल, रमेश जायसवाल जी क्या पूछना चाहते हैं।
हमारे कार्य क्षेत्र में हम अधिक से अधिक प्रभावशील बनने के लिए आप क्या सुझाव दे सकती हैं?
जिस व्यक्ति के अंदर कार्य कुशलता अच्छी होती है वही प्रभावशाली बन सकता है। कार्य करने की विधि जो अगलों को भी पसंद आए, वो कार्य करें जो अनेक आत्माओं के हित में हो, केवल अपना स्वार्थ नहीं। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी कार्य कुशल नहीं हो सकता है, ना अपने प्रभाव को औरों के दिल पर छाप लगा सकता है। इसमें से इसलिए स्वार्थ का कीड़ा कभी ना हो, कार्य श्रेष्ठ हो, दूसरों के प्रति हम दर्दी हो, दूसरों के दुखों को भी हम समझ सके और हमारे अंदर जहां तक हमारे से हो सके उन्हों के भी दुखों का हम निवारण कर सके, तो वो स्वाभाविक ही है हरेक का प्यार आपके प्रति हो जाएगा, स्नेह होगा, रिगार्ड होगा।
अपने कार्य क्षेत्र में आप प्रभावशील होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला मंत्र जो दीदी जी ने बताया कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी जो आपके साथ काम करते हैं। देखते हैं प्रकाश खनके जी क्या पूछना चाहते हैं।
दीदी, कई बार हमारे कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियां होती है जिसके कारण हम बेचैनी बढ़ जाती है, घबराहट होती है और इसके कारण से बीपी और शुगर का भी प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, तो आप कृपया इसके लिए समाधान बताएं।
कार्य करना ही है पर उसका हम भार अपने सिर पे ना ले। जब हम अपने मन में बार बार सोचते हैं इतना काम पड़ा है, ये पड़ा है, क्या करूं क्या करूं, तो वो जो इतना पड़ा है कार्य को का भारीपन आपके दिमाग को भारी करता है। अगर हम कार्य सहज रीति से सरलचित होकर के करते जाते हैं तो कार्य हमें बोझ महसूस नहीं होता है। और कार्य जब करने के लिए हम जाते हैं पहले ही अपने मन को तैयार रखिए कि विपरीत परिस्थितियां भी आनी ही हैं। कोई भी फील्ड में कोई भी विपरीत परिस्थितियों से बचा नहीं है, पर हमें अपने उसको फेस करने की शक्ति होनी चाहिए। ना तो कार्य में भारी हो ना समस्याओं में भारी हो, उसके लिए प्रॉब्लम के भी कारण को सोचेंगे। एक होता है प्रॉब्लम है वो सोचना, एक है इसमें से क्या हल निकल सकता है, हल की ओर जाइए प्रॉब्लम की ओर नहीं जाइए। अगर कहीं आपको कुछ सहयोग की भी आवश्यकता हो तो जो आपके विश्वास पात्र हो उनसे सहयोग भी लेकर के उस प्रॉब्लम को हल करिए, न कि चिंता करिए, चिंता चिता के समान है। और स्वाभाविक है जो मन का टेंशन होगा तो बीपी शुगर भी बढ़ेगा ही, तो इसलिए क्यों हम अपने बीमारी का शिकार बने, खुद को खुद का शिकार करें, अर्थात हम ही खुद ही टेंशन को पैदा करते हैं और खुद ही हो जाते हैं। और इसके लिए पहले ये भी हमारे ध्यान में रहे कौन सा रास्ता अपनाऊं जो उसमें से हम रास्ता निकाल के सफलता पा सको, मार्ग ढूंढिए न कि प्रॉब्लम का चिंतन करिए।
मुझे लगता है इन्हें अपना मार्ग मिल गया होगा। अगला सवाल पूछना चाहते हैं प्रेम कुमार जायसवाल।
आज के इस कंपटीशन युग में मैनेजमेंट जो है अपने सबॉर्डिनेट से ज्यादा अपेक्षाएं करने लगा है और सबॉर्डिनेट भी जो है वो मैनेजमेंट से और ज्यादा अपेक्षा चाहने लगे हैं। इन दोनों का जो टकराव है ये कैसे रुकेगा?
ये आपका प्रश्न राइट है कि दोनों के बीच में, कर्मचारी और मालिक के बीच में, ये जरूर एक दो के प्रति अपेक्षा रहती। वो कहते अधिक काम करें, वो कहते हमें अधिक प्रॉफिट मिले, जिसके कारण टकराव होता है। तो इसका भी वही है उत्तर कि आप जितना उनसे कार्य लेते हैं क्या हम बराबर उनका अधिकार उनको देते हैं, या कहीं हम कुछ उसमें से थोड़ी इकोनॉमी करने लगते हैं। जो उनको ये सोचने के लिए वो मजबूर हो जावे। वो भी देखिए, ये सोचना पड़ेगा, मार्ग निकालना पड़ेगा। और दूसरा, वर्कर भी जब सोचेगा कि बिना मेहनत तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, जब मैं अगले को फायदा नहीं दूंगा तो मेरे को वो क्यों पेमेंट करेंगे, ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग की बात है। आज वो अंडरस्टैंडिंग की मेन कमी हो गई है। वर्कर में कुछ आलस्य, वो भी बहुत है। कई बार ये भी देखा जाता है, ड्यूटी पर जाएंगे वहां सो भी जाएंगे, क्योंकि उस कार्य के प्रति उनकी लगाव नहीं है, केवल मिले। तो लगाव उनके अंदर कार्य के प्रति बढ़वाएं, उसके लिए या तो कोई मार्ग अपनाएं जो उनके अंदर कुछ आध्यात्मिकता के विचार मन में आए, जो अपनी जवाबदारियों को वो समझे। केवल लेने की ना हो, उसके पीछे करने की भावना पैदा हो, तो मन में उनकी भावना पैदा कराने का आप प्रयास करिए। बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि कार्य का क्या महत्व है उसमें उनको वो भी ज्ञान दिया जाता है, और काफी परिवर्तन आता है। क्योंकि कई बारी जो वर्कर होते हैं, जब ड्यूटी पर तो आ जाते हैं, घर का लोड भी कुछ लेके आते हैं, वो अपने टेंशन में होते हैं। हम समझते हैं ड्यूटी पे काम क्यों नहीं कर रहे, पर वो अपने टेंशन में है। कभी हम टेंशन में आ जाते हैं, कभी वो टेंशन में आ जाते हैं। तो अगर दोनों के बीच में ये ज्ञान राजयोग, इसकी शिक्षा मिल जाती है, तो वो अपनी जवाबदारियों को भी समझते हैं, वो उनके अगले की प्रॉब्लम को समझते हैं। ये दोनों जब एक दो को समझने लग जाएंगे तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए कुछ प्रयास करिए, ताकि उनके अंदर भी ये ज्ञान के राजयोग के रुचि संस्कार उनके अंदर भरे।
मुझे लगता है इस सवाल का उत्तर ये रहा कि मैनेजमेंट थोड़ा ईमानदार हो जाए और वर्कर थोड़ा मेहनती हो जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसके लिए दीदी जी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि कुछ वर्कशॉप्स हो सकती हैं जिसमें उनको अध्यात्म से जोड़ा जा सकता है, दूसरी बातों से जोड़ा जा सकता है, इंस्पायर किया जा सकता है अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। दीदी जी, अगला सवाल लेते हैं फिर हम। ये लोकेंद्र शर्मा जी पूछना चाहते हैं।
दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मनुष्य के चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां होती है, कार्य क्षेत्र में, परिवार में, यहां तक कि समाज में भी, और उन विपरीत परिस्थितियों में उसे सहज रहना जरूरी होता है, ये वो जानते हैं, मगर सहज कैसे रहा जाए, किन नियमों का पालन किया जाए, राजयोग से हमें ऐसी कौन सी प्रेरणा मिलेगी जिसमें हमारा बीपी भी कंट्रोल रहे, शुगर भी कंट्रोल रहे, मन प्रसन्न रहे, हम बिल्कुल सहज बने रहें, ये जानते हुए कि परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं।
परिस्थितियों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे कि कहा जाता है, ये अपने चार ऋतु आती हैं, बरसात भी आएगी, आंधी तूफान भी आएगा, गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, पर हमारे को नॉलेज है कि बरसात में मुझे अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, छाता रेनकोट यूज करना है, गर्मी में मुझे बचने के लिए एसी चलाना है, फैन चलाना है, इसी प्रकार से सर्दी में से बचने के लिए स्वेटर शॉल पहनना है। तो हम ये नहीं कह सकते ये सीजन क्यों आई, आप अपनी पहले से मन की तैयारी रखते हैं तो उस सीजन का भी आप सामना कर सकते हो। इसी तरह से जब भी कोई परिस्थिति आती है, थोड़ा भगवान भरोसे भी होना सीखेंगे। एक बार की बात है, पति पत्नी नाव में बैठे थे, चल रही थी नाव, बीच में उसके पति ने ऐसा एक एक्शन की कि जैसे अपनी पत्नी को नदी में गिरा रहा है, पर उनकी पत्नी हंसती रही। उसने गिराने की कोशिश की और वो हंसती रही। लास्ट में उसने प्रश्न पूछा, मैं तुम्हें नदी में गिरा रहा था, तुम हंसती क्यों रही, क्यों खुश रही? कहा कि मुझे विश्वास था आप मुझे गिरा नहीं सकते हो, क्योंकि आपका मेरे साथ प्यार है। तो देख, विश्वास ने उस परिस्थिति से भी पार करा दिया। परिस्थिति में देखने में तो परिस्थिति थी, पर वास्तव में यह परीक्षा थी। परीक्षा में पास हो गई निश्चय के आधार से। दूसरा, रावण के सभा में अंगद का गायन है, पांव दबा के खड़ा हो गया, क्योंकि उसको यह विश्वास था यह रावण मेरा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आसुरी वृत्ति वाला है, आसुरी वृत्ति कभी शक्तिशाली नहीं हो सकती, कमजोर होंगी, मेरा साथी राम है। तो जब उसने आसुरी शक्ति ईश्वरी शक्ति को समझा, उस पर विश्वास रखा, तो अडिग रहा। तो ऐसे ही कोई भी समस्या आए, हम अपने आप हलचल में क्यों आ जाएं, हम भगवान के भरोसे, और ये बुद्धि मेरे आज समस्या कल खत्म हो जाएगी, तो इसलिए हलचल में नहीं आएंगे।
अगला सवाल लेते हैं जो पूछना चाहते हैं मोहन जोशी जी।
दीदी नमस्कार। हम लोग जो डेली रूटीन ऑफिस में काम करते हैं वो काफी प्रेशर में करना पड़ता है, और जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो प्रभाव है फैमिली लाइफ पे या सामाजिक लाइफ पे हमारा पड़ता है, तो आप ऐसा कुछ सुझाव बताइए ताकि तीनों चीजें क्लासिफाइड रहे, ऑफिस का कार्य, समाज का कार्य और पारिवारिक जवाबदारियां।
कार्य करना है पर तनाव रहित, घर का काम घर तक, ऑफिस का काम ऑफिस तक, ये कला हमको पहले सीखनी है। ये सब में बिगाड़ तब आता है, ऑफिस का तनाव घर में ले जाते हैं, घर का तनाव ऑफिस में लेके जाते हैं, तो ना घर के काम को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, ना ही हम ऑफिस के काम को अच्छी तरह संभाल सकते हैं। तो कारण है बीच में तनाव, कार्य नहीं पर तनाव है, जिसमें हम अपनी जिम्मेवारियों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तनाव को दूर करने के लिए ये राजयोग बहुत बहुत सफल सिद्ध होता है, क्योंकि यहां पहले तनाव किस में आता है, मन में। मन में क्या चीज है, उसका ज्ञान, मैं कौन उसका ज्ञान, मन को मुझे किस दिशा की ओर ले जाना है उसके लिए चाहिए शक्ति। शक्ति मिलेगी हमें परमात्मा से, इसलिए सलाह ये दी जाती है थोड़ा समय उसमें से निकालिए, आकर के राजयोग का अभ्यास कैसे किया जा सकता है उसको सीखिए, तो तनाव की क्वालिटी कम हो जाएगी और फ्रेशनेस मन में ज्यादा रहेगी, तो कार्य की भी स्पीड बढ़ जाएगी।
अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं तो ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आइए, घर में आके घर के हो जाइए, और इस डिफ्रेंशिएशन को समझिए कि कहां पे आपको किस तरह से रहना है, तो आप अपने सभी फेजेस को सभी जगहों पर आप पूरी तरह एंजॉय कर सकेंगे। दीदी जी, एक अंतिम सवाल और हमारे सामने है, श्री मेशराम जी।
संगठन में जो नकारात्मक शक्तियां होती है उससे संगठन को काफी हानि पहुंचती है, वो नकारात्मक शक्तियों से बाहर कैसे आए जिससे हमारा संगठन लाभान्वित हो, इस पर मार्गदर्शन कीजिए।
क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर हमारे संगठन टूटते हैं तो नकारात्मकता के कारण टूटते हैं। हर बात में हमारी सकारात्मक विचार, कर्म, व्यवहार होना चाहिए, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, प्रेम, भाईचारे का नाता, जब भाईचारे का नाता खत्म होता है वहां ये दूरियां पैदा होती हैं। तो इसका भी हल हमें आध्यात्मिकता ही देती है, ईश्वरीय ज्ञान देता है, क्योंकि जब भाईचारे का नाता आता है हर एक का कल्याण की भावना पैदा होती, उसका भी भला। आज हम किसी के भले को देख करके खुश नहीं होते, दुखी होते, किसी को ऊंचा चढ़ते हुए देख करके उसकी टांग खींचना चाहते हैं। जैसे खेखड़ा होता है, आप अगर दो खेखड़ों को एक खुली बॉटल के अंदर रख दीजिए, वो कभी एक भी बाहर नहीं आएगा। अकेले को रखो, छलांग मारेगा, वो कभी भी बाहर एक भी नहीं आ सकता। क्यों? वो ऊपर जाता है वो टांग खींचता है, वो ऊपर जाता है वो टांग खींचता है। तो मन हम किसी की उन्नति में खुश नहीं है, किसी के आगे बढ़ने में खुश नहीं है, किसी के मेहमत सुनने की शक्ति नहीं है, जिस कारण से हम एक दो की टांग खींचते और उसका परिणाम हमारे संगठन पर आता है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा के आधार से आप इस बात को परिवर्तन में ला सकते हैं। इसलिए थोड़ा समय निकालें, बहने सेवा के लिए बैठी हैं, तो आपके जब विचारों में वो परिवर्तन आएगा तो कर्म में स्वाभाविक ही आ जाएगा।
नकारात्मक शक्तियों को कम करना है तो शायद सबसे पहले अपने भीतर से केकड़ा वृत्ति को निकालने की जरूरत है, और जब हम अपने अंदर भाईचारा लाएंगे तो शायद दूसरे लोगों में भी नकारात्मक ताकतें कम होने लगेंगी। दीदी जी, आज हमारे साथ जो वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, एक पावरफुल वर्ग था, और इन्होंने अपनी बहुत सारी समस्याओं के हल आपसे सुने, बहुत सारी समस्याओं के समाधान जाने, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप लोगों ने समय निकाला, यहां पर आए, कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, इसलिए आप सभी को भी धन्यवाद। मित्रों, हमने मार्गदर्शन कार्यक्रम के दौरान एक नहीं बल्कि समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के सवालों को समझने की कोशिश की है, उनको समाधान देने की कोशिश की है। आदरणीय दीदी जी ने उनको आध्यात्म का रास्ता दिखाया है। आज जितने अलग अलग वर्ग हैं उनकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन उनका उत्तर प्रेम में है, आध्यात्म में है, ये हम सबने जाना, ये हम सबने सीखा। मार्गदर्शन कार्यक्रम वास्तव में हमारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है, और हम पुनः अगले कार्यक्रम में मिल सकते हैं, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तब तक के लिए अर्चना सिंह को विदा दीजिए। नमस्कार।